युगों युगों से सच्चाई तो एक ही रही है और सत्य कहते ही उसे हैं जिसमें बदलाव ना आए, संस्कृति के साथ ना बदल जाए, स्थान के साथ ना बदल जाए, काल के साथ ना बदल जाए, जिसके ऊपर मौसमों का प्रभाव नहीं। तो ये एक ही सत्य है, परमात्मा ईश्वर पारब्रह्म निराकार, और यही आदि अनादि है। और इसी का बोध हासिल करने की प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि आत्मा इसकी अंश है, जिसके कारण ये जड़ चेतन है, ये सारी कायनात, ये सारी यूनिवर्स जिसकी बदौलत है। तो ऐसे परमात्मा को परम पिता भी कहा जा रहा है। तो इस परम पिता की पहचान करने के लिए, परम पिता जब हम कहते हैं तो इंसानों को ये बोध हो कि हमारा एक ही पिता है और हम सब इसकी संतान हैं, चाहे फिर कोई गढ़वाली है, चाहे कोई पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, या फिर चीनी है या जापानी है। जब एक परम पिता, परम और पिता, तो एक ही परम पिता है जब सब इसकी संतान, तो ये सबका भला का भाव, सबकी भलाई का भाव ये पैदा हो जाता है जब वाकई हम इस परम पिता का बोध हासिल करते हैं। वरना हर कोई अपना अपना पिता मान बैठा है, संस्कृतियों के आधार पर, पहरावों के आधार पर, मज़हब धर्म के आधार पर, हर कोई अपना अपना पिता मान बैठा है। लेकिन परम पिता जब कहा जाता है, उस हिसाब से तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ एक मत हैं कि पिता कोई अनेकों नहीं है, प्रभु कोई अनेकों नहीं है, एक ही नूर ते सब जग उपजा, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खलकत सारी है। तो एक ही ये खलकत वसुधैव कुटुम्बकम के शब्द पढ़ने को तो बड़े आसान हैं, बड़ी सरलता से पढ़ जाते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन सारी वसुधा सारी धरती के ऊपर बसने वालों को हम एक कुटुम्ब मानते नहीं हैं, एक दूरियां हैं, बड़े फासले हैं, जाति की दीवारें हैं, मज़हबों की दीवारें हैं, संस्कृतियों की दीवारें हैं। तो पढ़ना बड़ा आसान है वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन भाव नहीं बन पाते उतनी देर जितनी देर ये बोध भी जुड़ जाए, ये जागृति भी आ जाए, ये समझ भी आ जाए। केवल तोतों की तरह रटन कर लेना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये भी तोतों ने सीख लिया था। लेकिन शिकारी भी पहले तो अश्वंजस में पड़ गया कि ये तो बड़े ज्ञानी हो गए, अब मैं तो भूखा मरूंगा, ये सब समझ गए हैं, तो चलने लगा, घर वापस लौटने लगा। लेकिन ध्यान आया कि मेरा क्या जाता है, घर से इतनी दूर चलकर आया ही हूँ, तो जाल बिछा देता हूँ, दाने बिखेर देता हूँ, हो सकता है इनमें से कोई अज्ञानी आ जाए और फंस जाए इस जाल में। और उसने जो ही जाल बिछाया, दाने बिखेरे, सब के सब, एक भी नहीं बचा, सब के सब उस जाल के ऊपर झपटे। दानों को खाने के लिए शिकारी ने एक झटके से ही सबको उस जाल में लपेट लिया और कंधे पे रख कर घर को जा रहा है बाजार बेचने के लिए। और वो जाल में बंधे हुए तोते पड़ी जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। मतलब कि केवल मुहारनी, केवल शब्दों तक सीमित, साथ में जानकारी नहीं कि आखिर जो हम बोल रहे हैं उसके मतलब क्या हैं, उसके मायने क्या है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है कि एक वो बोध हो जाए। पढ़ने को पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, युगों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जिनको पढ़ने के साथ जुड़ गया ज्ञान और पता चल गया कि परमात्मा कहते किसको हैं, पता चल गया कि धर्म कहते किसको हैं, पता चल गया कि वाकई एक परिवार का अंग कैसे बना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये जब तक ये उजाला नहीं होता मन में, तब तक ये सारे भ्रम और भ्रांतियाँ और निन्नी भ्रमों में जीते रहते हैं। एक भक्ति की सार भी नहीं जाने, एक पूजा किसकी करनी है ये भी नहीं जाना। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा था क्या कि हालांकि अनेकों प्रकार की पूजा हो रही है, लेकिन जो जिस रूप में जिसकी पूजा कर रहा है वहीं तक ही पहुंचता है केवल, उससे आगे नहीं। लेकिन जो मुझ अविनाशी को मेरे असली रूप में जान जाता है, मोक्ष और मुक्ति उसी के हिस्से में आती है। वरना तो कोई पितरों की पूजा करने वाले बस वहीं तक, आप देख ही रहे हैं तमाशा किस तरह की गलतान पूजाओं में इंसान और किस तरह के दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहीं तक हैं, उससे आगे नहीं। हो सकता है कुछ दुनियावी पदार्थों के लाभ मिल जाएं, बहुत बहुत रिद्धियां सिद्धियों वाले भी होते हैं, बहुत तप करने वाले, लेकिन उससे आगे नहीं, वहीं तक। इसका मतलब कि सुनहरी अवसर मिला इंसानी जामे के रूप में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इतना अमोलक जन्म माना, तो क्या केवल रिद्धियां सिद्धियां ही मिल जाएं? क्या केवल दुनियावी पदार्थ ही प्राप्त हो जाएं? क्या अज्ञानता में ही सारी उम्र बिता दें? आत्मा को क्या सुरखरू नहीं करना है? क्या इसको शरीर मिलते ही रहेंगे और इसी में ही जकड़ी रहेगी और उन शरीरों के साथ जुड़े हुए तमाम परेशानियां? तो भगवान कृष्ण ने जहां इस बात के ऊपर रोशनी डाली कि आत्मा शरीर धारण करती है, उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर वस्त्र धारण करते हैं, हमारे शरीर के वस्त्र बदलते हैं। हम सुबह कुछ वस्त्र पहनते हैं, शैया पे सोने के वक्त हम कोई और वस्त्र पहन लेते हैं, सेज पे जाने से पहले। इसी प्रकार से कहीं किसी विशेष समारोह में जाना है, शादी विवाह पे जाना है, हमारे वस्त्र किसी और प्रकार के हो जाएंगे। तो शरीर हमारे वस्त्र बदलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के लिए शरीर वस्त्र तो ये भी बदलती है। लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने केवल इतना ही कहा है? अक्सर हमारे कानों में यही सुनने को मिलता है कि आत्मा शरीर धारण करती है, जैसे शरीर हमारे अनेकों वस्त्र धारण करते हैं। ये तो हमें बड़े जोरों से बात बताई जाती है, लेकिन अगली बात के ऊपर रोशनी नहीं डाली जाती है कि भगवान कृष्ण ने कहीं ठहराव की भी तो बात कही है, कहीं मोक्ष और मुक्ति की भी बात कही है। लेकिन उस तरफ क्योंकि खुद अनजान है, तो हमें भी उस पहलू की तरफ नहीं ध्यान दिलाएंगे। बस वो एक पहलू ही, सिक्के का केवल एक पहलू नहीं होता है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। लेकिन एक पहलू तो हमें दर्शा दिया जाता है, लेकिन दूसरा पहलू अछूता ही रह जाता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही बात हर किसी के जहन में दिलो दिमाग में बिठाने के प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रभु परमात्मा को जब तक इसके असली रूप में नहीं जानेंगे, तब तक हमारे बंधन नहीं कटेंगे, हमारे भ्रम मिटेंगे नहीं, और इसी तरह से हम जकड़े रहेंगे, इससे निजात कभी मिलने वाली नहीं। ये उम्र भी बिता देंगे, फिर कभी इंसानी जन्म मिला जो बड़े दुर्लभ जन्म, जिसको कहा है कि मानव जन्म दुर्लभ है, हो उतना बारंबार जू बन फल पाके भोए गिरे बौर न लागे डार। कि एक पेड़ की टहनी से टूटा हुआ फल लाख कोशिश कर ले इंसान, फिर से टहनी पे नहीं लगा पाता है। तो ये मनुष्य जन्म भी इतना दुर्लभ है, नहीं मिलता है इतनी आसानी से। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथों ने कहा कि ये बड़ा दुर्लभ जन्म है, लेकिन इंसान इसी अज्ञानता में रहकर कौड़ियों के भाव इस जन्म को गंवा देता है, मंजिल मकसूद पाने की बेला, लेकिन रास्तों में ही भटकता रहता है, अज्ञानता में ही भटकता रहता है। घोर अंधकार में ही विचरण करता रहता है। तो महापुरुष संत जनों की चेष्टा, महापुरुषों के एक मन के भाव, उपकारी जज्बे के इंसान इस गफलत की नींद में ना सोया रहे, इस अंधकार से उभरे, ज्ञान उजाला पा के अंधकार को मिटाए और अपनी मंजिल मकसूद को पाए और अपना संसार में आया हुआ ये सफल करे। लेकिन ऐसा है नहीं। इंसान के लिए संसार और ये बाकी तमाम सिलसिले महत्ता रखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति और भक्त के वो भी बातें कही कि कोई आर्थ भक्त है, कोई अर्थार्थी भक्त है, कोई जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी भक्त है। आर्थ भक्त वो है जो भय के कारण मेरी पूजा कर रहा है, अर्थार्थी भक्त वो है जो अर्थ की प्राप्ति के लिए मेरी पूजा अर्चना कर रहा है। बहुत बहुत कतारें, बहुत बहुत यात्राएं ये तो हो रही हैं और ये सब कुछ देखकर अक्सर सोचते हैं कि बड़ी भक्ति है। लेकिन सवाल ये है कि मन में कौन सी जिज्ञासा लिए हुए स्थान स्थान पर इंसान घूम रहे हैं, यात्राएं भी कर रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, रात रात भर भी जाग रहे हैं, शरीरों को सुखा भी रहे हैं, लेकिन क्या मकसद, क्या भाव? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भय के कारण, कि कोई नुकसान ना हो जाए, कोई पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, अर्थ, अर्थ की प्राप्ति, उसके लिए मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन उन दो प्रकार की भक्ति को कहीं पर भी ऊंचे दर्जे का नहीं माना भगवान कृष्ण ने। उससे भी एक कदम आगे जो बढ़ गए कि जिज्ञासु भक्त, कि जिनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि वाकई जाने तो सही कादर को, कुदरत को तो बहुत महत्ता दे रहे हैं, कुदरत में तो कितने उलझे हुए हैं, कुदरत के तो बड़े नज़ारे ले रहे हैं, बड़े भोग भोग रहे हैं, लेकिन कादर, कादर को तो भी जाने। तो वो जिज्ञासा पैदा हुई सत्य को जानने की। तो कहते हैं पहले दो प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ वो कि जिसके मन में कम से कम ये जिज्ञासा तो पैदा हुई। तो इसी प्रकार से उससे भी आगे फिर सबसे ऊंचे दर्जे वाले मेरे ज्ञानी भक्त, जो मुझे सब में और सबको मुझ में जानते हैं, जो मुझे मेरे निज रूप में जानते हैं, वो हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त जो मुझे जानकर मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। केवल एक हवा में ही तीर नहीं चला रहे हैं, जो केवल अनुमानित रूप मेरा नहीं मान रहे हैं कि केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, मुझे मेरे असली रूप में जानकर मेरी पूजा कर रहे हैं, वो है मेरे श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त। तो हम भ्रम में आ जाते हैं कि क्योंकि इतना इतना कुछ हो रहा है तो ये बड़े लगन वाले हैं, बड़ी एक मन में जिज्ञासा है प्रभु को प्राप्त करने की। स्वामी विवेकानंद जी ने भी जैसे कहा कि सत्य की प्राप्ति की इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए जैसे डूबते हुए इंसान को पानी से बाहर आने की इच्छा होती है। कभी सोचें, यहाँ भी दरिया बहते हैं, पानी, नदियाँ बहती हैं, कभी स्नान करो, कहीं पर नहाते नहाते पांव फिसल जाए और गहरे में उतर जाए और मुंह तक पानी आ जाए, अब नाक तक पानी आ जाए, उस वक़्त क्या इच्छा होगी आपकी? क्या इच्छा होगी कि कोई मैं अफसर लग जाऊँ, क्या मैं इम्तिहान में पास हो जाऊं, मैं फलां प्राप्ति कर लूं? उस वक़्त क्या इच्छा होगी? केवल इतनी इच्छा, कोई हाथ का सहारा दे, निकाल ले मुझे, नहीं तो मर जाऊंगा। डूबते हुए इंसान को जैसे पानी से बाहर आने की इच्छा होती है, इतनी तीव्र इच्छा ये सत्य की प्राप्ति की होनी चाहिए। लेकिन कहां पर है? नहीं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, दुनियावी कामयाबियाँ मिल जाएं, ये प्राप्ति हो जाए, मन चाहा पूरा हो जाए, अनचाहा ना हो, इस प्रकार से इन भावों से युक्त होकर विचरण किया जा रहा है, प्रलोभनों में युक्त होकर कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, कहीं पर तृप्ति नहीं है। कहीं पर संतुष्टि नहीं है, तो क्या ये दौलतें साथ रहेंगी? सिकंदर की मिसाल तो के एक सिकंदर बेचारे की शामत आई हुई है, युगों बीत गए बेचारे को जिए हुए, यहाँ से रुखसत हुए, लेकिन उसी को ही हम दुत्कारते रहेंगे। कौन इंसान है जो प्रलोभनों में नहीं है? शामत उस बेचारी एक की ही आ गई, लेकिन बताने की इसलिए उसका नाम लिया जाता है कि सिकंदर जब रुखसत हुआ संसार से तो दोनों हाथ खाली थे, कि दुनिया का इतना हिस्सा अपने अधीन कर लेने के बावजूद अपने मुल्क भी नहीं पहुंच पाया, जायदादें लेके जानी थी अपने मुल्क, खुद भी नहीं पहुंच पाया वहां पर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भक्त महापुरुष संत जन वो यही इंसान को समझाने के यत्न करते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि कोई दौलत का इस्तेमाल नहीं करो, अच्छा भोजन ना करो, या कोई अच्छे मकान को प्राप्त ना करो, अच्छे वस्त्र ना पहनो, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि एक होता है गुजरान, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि नीड कैन बी फिल्ड बट ग्रीड कैन नॉट बी, कि जरूरियात तो फिर भी पूरी हो सकती है लेकिन लोभ नहीं पूरा हो सकता है। वो तो वो कासा है जिसमें छेद कर दो, जितना डालते जाओ खाली का खाली रहेगा, भरते जाओ और खाली का खाली। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि ये गुजरान के लिए है संसार, हमने संसार में रहना है, इसी में ही हमने कर्तव्यों की पालना करनी है, इसी में ही गृहस्थ को निभाना है, इसी में ही हमने मेहनत मशक्कत करनी है, इसी में ही तमाम उतार चढ़ावों में से गुजरना है। तो ये संसार में तो हमने रहना ही है, लेकिन महापुरुष कहाँ पर कौशन देते हैं, कहाँ पर एक ऐसी हमें चेतावनी देते हैं कि संसार में हमने रहना है बेशक, लेकिन ख्याल ये रखना है कि संसार मन में ना बस जाए, मन में बसे तो निराकार बसे। तो अवसाद संगत यही निराकार ही तो है कि निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, कि निराकार, यहाँ आप शब्द सुन रहे हैं बार बार धन निरंकार, क्योंकि ये पंजाबी में है, गुरमुखी में है, वरना है निरंकार जिसको कह रहे हैं, ये निराकार शब्द ही है। जैसे घृत से घी हो गया, इसी तरह से निराकार से निरंकार हो गया भाषा की तब्दीली के कारण। तो धन निरंकार के हे निराकार तू ही धन्य है, कहीं भूल कर भी संसार को धन्य ना मान बैठूं, धनता तुझे ही दूं, धन तुझे ही मानूं, उठते बैठते तुझे ही मैं महत्ता दूं, इसलिए धन निरंकार के हे निराकार तू धन्य है, तू ही मेरा आधार है, और इसलिए तुझ संग ही नाता जुड़ा रहे, तुझे ही आधार बनाकर जीवन को जीऊं, बेशक फिर तू ताकतें भी दे दे, बेशक तू दौलतें भी दे दे, बेशक तू शौहरत भी दे दे, तमाम तू विद्याएं भी मेरे हिस्से में डाल दे, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद इनमें इतना ना खो जाऊं कि तुझे भी भुला दूं, या तुझे महत्ता देना छोड़ दूं, और इन ताकतों के नशे में चूर, इन दौलतों के नशे में चूर, इनको ही महत्ता देता चला जाऊं। नहीं, ये फिर भी सब ढलती हुई छाया है, शाश्वत तो फिर भी तू ही है, एक परमात्मा। ये हवा इसको नहीं उड़ाती, बादलों को उड़ा देगी। ये दुनियावी दौलतें हमारे पास आज हैं, कल को नहीं भी हो सकती हैं। आज तंदुरुस्त है शरीर, कल को रोगी भी हो सकता है। आज राजा है, कल को कोई उसको पूछने वाला नहीं। आज तख्त, कल को तख्ता। तो ये ढलती हुई छाया, लेकिन ये प्रभु शाश्वत, और भक्त जो इसका आधार लेकर इसी को ही समर्पित होकर इसी के रंग में रंगे हुए जीवन जीने वाले, वो भी इसी की तरह शाश्वत हो जाते हैं। इसलिए युग बीत गए हनुमान जी की आज भी पूजा, शबरी के आज भी नगमे, छोटा सा भक्त प्रहलाद आज भी जय जयकार का पात्र, क्योंकि शाश्वत को जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। सदा का सुख सदा रहने वाले साधन से ही प्राप्त हो सकता है। तो ये संसार तो सदा रहने वाला है नहीं, तो इसलिए सदा का सुख नहीं मिल सकता है। तो सदा का सुख मिलता है शाश्वत साधन से जो सदा रहने वाला है। तो इसलिए सदा रहने वाला तो ये परमात्मा ही है, ये ईश्वर ही है, ये निराकार ही है, यही है जो अडोल है, बाकी सब डुलायमान है। ये बाकी संसार क्षण भंगुर है, लेकिन ये एक हमेशा रहने वाला है। संसार को बनाने वाला ये परमात्मा, लेकिन ये स्वयं भू है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको ही जीवन में महत्ता देनी, इसी को ही दिल हृदय में बसाना और इससे नाता जोड़कर जुड़े रहकर इस जीवन के सफ़र को तय करना। तो इसलिए महापुरुषों ने बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया कि पहली जो बात के ऊपर जोर दिया कि अपनी आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ो, ये इस आत्मा को बोध कराओ इस अपने मूल का, ये अज्ञानता में ना रहे आत्मा, वरना ये जकड़न में रहेगी, भटकती रहेगी, जन्मती मरती रहेगी। लेकिन इंसान अक्सर यही कदम नहीं उठाते और यही समझ लेते हैं बस जो कुछ कर रहे हैं हम, बस इसी से ही मंजिल मकसूद मिल जाएगी। जंगलों में चले गए तो बस हो गया पहुंचना। लेकिन महापुरुष कहते हैं, सूफी संत कहते हैं कि जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गावा बछियां नू, कि अगर जंगलों में जाने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, मंजिल मिल जाती है, तो फिर जंगलों में अनेकों गाय हैं, अनेकों प्रकार के जानवर हैं, पशु हैं, तू तो बाद में जंगल जाएगा, वो पहले ही मौजूद हैं, फिर तो बड़े भाग्य शेर तन पावा, क्योंकि शेर तो जंगल में मौजूद है और जंगल में जाने से मंजिल मिलती है। जे जंगल जे रब मिलदा नातियाँ धोतियाँ तो तब मिलदा डडुआ मछियाँ नू, कि अगर नहाने से ही ये एक आत्मा का कल्याण हो जाता है, मंजिल मकसूद मिल जाती है, तू तो बाद में नहाएगा, वो मेंढक और मछली तो पहले ही जल में है, फिर तो बड़े भाग्य मेंढक तन पावा, ये लिखना चाहिए था कि बड़े भाग्य हैं मेंढक तुझे, मछली तुझे उस रूप में जन्म मिला, क्योंकि स्नान से मुक्ति मिलती है। तो कहने का भाव कि जे रब मिलदा मड़ी मसाणी तब मिलदा चाम चिड़कियां नू, कि अगर मणि मसाणों में जाकर मिलता है तो फिर वो चमगादड़े वहीं पर हैं, फिर तो बड़े भाग चमगादड़ तन पावा। तो कहने का भाव क्या है, ये वो एक ऐसी सच्चाइयां हैं जो महापुरुषों ने बयान की हैं। इसीलिए संत महात्मा बताते हैं और पढ़ने को पढ़ भी रहे हैं कि गुरुबिन भव नहीं तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। राम जिनको भगवान कह रहे हैं वो तो वशिष्ठ जी के पास जाएंगे भगवान होकर भी, और हम कहते हैं कि बस हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, हम ये जानते हैं वो जानते हैं, हमें कोई जाने की ज़रूरत नहीं किसी के पास। इसका मतलब राम जी से भी श्रेष्ठ हो गए, वो तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं चरणों में, हमें जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने बड़ा पढ़ा है। तो वो भगवान होकर भी वशिष्ठ जी का द्वार खटखटा रहे हैं, इसका मतलब कितना अभिमान कि कुछ पढ़ाइयाँ कर ली तो मंजिल पा ली, हमने ये कर लिया वो कर लिया तो मंजिल पा लेंगे। और उधर मर्यादा क्या है, राम जी बता रहे हैं कि इस तरह से गुरु के चरणों में जाकर ये विनती कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये कुछ पहलू हैं ऐसे जिनका जिक्र आज इस सत्संग में हुआ है। तो दास इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहेगा। सत्संगत जी धन्य।